सोच करके अपराध करने से और क्षमा नहीं मांगा जाए और मन में अनुताप न हो तो उनकी चरण धूलि भी उनको क्षमा नहीं करेगी। चरण धूलि उसके समस्त सारे तेजों को जला करके भस्म कर दे। भक्ति देवी एक केवल मैटेरियल मूड नहीं, केवल जड़ी भावना ही नहीं है, एक भगवान की शक्ति है, भगवान की प्रिया है। वो सब कुछ समझते हैं एज ए पर्सनल, उनका व्यक्तित्व है, इसलिए उनके चरणों में, भक्तों के चरण में भक्ति, कोई भक्ति मान व्यक्ति है और उसकी कोई निंदा की तो ये कौन लेगा विचार? भक्ति विचार करके कह जा रही ये बड़ा पाषंड है, वैष्णव लोग नित्य चरण नहीं ले लेता, किंतु भक्ति उसकी भक्ति जो रही सही वो भी चल, इसलिए इस विषय में सावधान रहना चाहिए। थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए, थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी अपनी गंडी में लोगों को लाने के लिए, जैसे उनसे बातचीत करने से हमारी गंदी टूट जाएगी और हमारे लोग घर में चले जाएंगे, ये स्वार्थपन लोग बहुत अपराध हो जाए। ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें लिखा गया है कि भक्तों से, भक्तों का संग मत करो और हरि कथा उनसे मत सुनो? इसलिए इसमें उपेक्षा हो जाती है। भक्ति देवी जब पकड़ उसकी भक्ति को रही से तो जिसको इतनी ही ज्ञान नहीं है वो भक्ति में क्या प्रवेश करेगा? इसलिए महापुरुष लोग किसी का अपराध नहीं लेते, बड़े दयालु होते हैं, किंतु फिर भी भक्ति देवी या उनकी चरण धूलि और उसके तेज को समाप्त करके भक्ति पथ से उसको विदाई दे देते, किंतु उसमें भी जैसे दक्ष प्रजापति और शंकर जी हैं, बड़ी भारी देवताओं की मीटिंग हो रही सभा में, उसमें ब्रह्मर्षि इत्यादि सभी ऋषि हुआ है और देवता हुआ है, दक्ष प्रजापति भी बड़ा प्रभावशाली था, उसके ललाट से तेज निकलता, जब उस सभा प्रवेश किया तो जितने देवता लोग उठ करके खड़े हो गए और ब्रह्मा जी को उसने केवल प्रणाम किया और बाकी सब लोग उठ करके खड़े होकर अभिवादन किया, उसके बाद में वो बैठ गया तो सभी लोग बैठ गए, किंतु शंकर जी जैसे के तैसे। उसने सोचा जैसे ये देखो तो हमारा जमाता दामाद, दामाद तो पुत्र के समान होता है, इस सभा में सभी लोग उठ करके खड़े हुए और हमारा अभिवादन किया, भाई ऐसा मूर्ख बेटा जिसको हमने अपनी बेटी की शादी के, अरे उठ करके हमारा अभिवादन नहीं किया? शंकर जी उस समय में भगवान के ध्यान में जो निरंतर भगवान का प्रणाम कर रहे हैं, जगत का कल्याण करने वाले हैं, उनका नाम ही है शिव, शिव माने किसी काम से, और ये ब्रह्मा के भी प्रणाम में है, और की तो बात क्या, भगवान हरि के हरिहर बंधु है, सतान तत्व ज्ञान में बहुत ऊंचे हैं, संसार को वो भस्म और हड्डी समझते हैं, समस्त प्रकार के भोगों से रहित रह करके भी सब संसार के सब लोगों को सब प्रकार के इतने ऊंचे विचार, और उसने समझा जैसे ये उठ करके अभिवादन नहीं किए तो ये शंकर जी का दोष है या उसका दोष है, किसका दोष नहीं समझ सका। इसलिए कनिष्ठ वैष्णव लोग कभी कभी उत्तम भक्तों को नहीं समझ पाते ना? और उसकी अनुशीलन, उसकी निंदा और उसकी अवज्ञा, किंतु फल होता है महान फल जाकर के भक्ति में लगता है और भक्ति से जिसके लिए सब घर बार छोड़ा है, पितृ पुरुषों छोड़ा है, वही गालियां दी थी तुमको, इस तरह से। और कहा जैसे तुम्हारी जो पूजा करेगा तुम पाषण तत्व को प्राप्त होगा। शंकर जी चुपचाप बैठे, उन्होंने नहीं भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, चुपचाप। हमको ये समझ नहीं सका, मैं इसका भी कल्याण करना वाला चाहता हूँ और हमको अपना दामाद समझ करके, साधारण अपने जैसा एक व्यक्ति समझ करके क्या हुआ, बकरे वो मारा गया, उसकी लड़की आकर के उन्हीं के यज्ञ में जल भरी और शंकर जी के दूतों ने आकर के वो यज्ञ को विध्वंस कर डाला और उसको काट करके सिर हवन किया। अंत में ब्रह्मा विष्णु इत्यादि समीर करके शंकर के पास में गए, यज्ञ आरंभ हुई थी, इसको किसी न किसी रूप से पूर्ण करना है। शिव जी प्रसन्न होकर के बोले तो हम मुझे मेरे लिए क्या किया है, तो उसके यज्ञ में चलिए और उसकी पूर्ण आए। अच्छा तो ये पूर्ण तो वही करेगा, अभी तो मर गया है, इसको जीवित करना है। अच्छा जाओ तो जो सामने मिल जाए उसका सिर काट करके ले आओ। एक बकरा जा रहा था, उसका सिर ले आए और उसने जोड़ दिया। बकरे का सिर किस लिए दिया, बहुत काम विभोगी होता है, भक्ति शक्ति से तो कोई संबंध ही नहीं। तो जो मनुष्य सुंदर शरीर पा करके भी भगवान का भजन नहीं करता वो पशु के समान बकरे के समान है, इस चीज को। अब तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और उनके चरणों में बार बार गिर रहे गए, हमने बहुत बड़ा भारी पड़ा और आपने सब कुछ क्षमा करके हमको जीवन दान करके हमको अपने पुनः भक्ति कर देगा आप। किंतु ले डूबा ना, जैसे शंकर जी की निंदा की उसने, उनके भावों को नहीं समझ सकते। इसलिए कभी कभी कनिष्ठ अधिकारी लोग महापुरुषों के या मध्यम अधिकारी के भक्तों के भी चरित्र को नहीं समझ पाते हैं, उनके चरणों में अवज्ञा करते हैं, निंदा करते हैं, अर्थ को और प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा बना लेते हैं, समझते कि ये भी प्रतिष्ठा और अर्थ के लिए, समझ नहीं पाते। दूसरी एक और उपमा देकर के समझ, जो उत्तम महाभागवत होते हैं उन पर किसी चीज का अंकुश नहीं होता शास्त्र के विचार। कभी कभी अपराध करने पर भी उनका कल्याण कर, जैसे महाराज चित्रकेतु थे, उनकी कितनी हजार स्त्रियां थी। अच्छा अपने लोग विश्वास नहीं करेंगे इसलिए नहीं कर कोई कोई विश्वास कर जाए, 1 करोड़ रानियां पकड़ाने की जरूरत है कि मरते दम तक 3000 वर्ष की आयु में बेटा तुम पुत्र की हम न मरो, पुत्र यदि कुपुत्र हो गया तो तुम मरेगा, संत के बदले अशांति होगी, इसके लिए चेष्टा मत करो, भगवान ने तुम्हारे इसके कर्म के अनुसार में जो कुछ लिखा है जैसा दे रहे हैं उसी में रह करके तुम भगवान का भजन करो। नहीं माना, अच्छा तो नहीं मानता है तो ठीक है मैं तुमको पुत्र दूंगा, ये कह करके यज्ञ कराया या कुछ ऐसा यज्ञ का फल दे दिए, तुम्हारी जो सबसे प्रिय रानी है उसको दे दो। उन्होंने अपने बड़ी जो सबसे श्रेष्ठ थी बड़ी खाने से और मंत्र के बल से उनके बड़ा ही सुंदर उनहार चांद सब दिन रात चांद के समान पड़ गए, 5 वर्ष का हो गया, बहुत खूबसूरत मुस्कुराता तो मानो खुल छट रहे, सब लोग उसी पर बलि जाते। राजा राज करना भूल गया और बच्चे के पास में बैठा रहता और सबसे अधिक आदर करता उसी बड़ी रानी का, और रानियों में द्वेष हो गया, इसी रानी को आदर करता, इसी बच्चे को आदर करता, यह बच्चा मर जाए बस सब पर समता आ जाएगी, नहीं तो हम लोग को पूछता नहीं है, तेल और साबुन के लिए भी नहीं पूछता है? कभी ये भी नहीं पूछता जे तुम कैसी है, क्या कर रही है, खाई कि नहीं, तो पति का प्रेम तो कुछ होना चाहिए। उन्होंने सीप में दूध में मिला करके काम को पीस और उसका कोशिश में बड़ा भारी रोता उठा, घर में कोई चुप कराने वाला कोई नहीं, जो ही आए सो ही रोए, रानी तो वहीं पर अचेत होकर के गिर पड़ी और बच्चे के गोद में ले गई और पति पिता उसका आया रोते हुए परम रोके से परमा आकर के और वो भी देखा वहीं पर छाड़ जब कोई नहीं समझाने वाला आया तो उसी समय में अंगिरा और नारद आकर के उनको बताया भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई, तो लड़का मर गया, कहाँ गया, नहीं तो यही तो सो रहा है, कहाँ गया, और गया तो आ जाएगा, नहीं वहां से अब नहीं आएगा, अच्छा तुम विश्व के सभी लोग उसके लिए रो तो आ जाएगा, कौन किसका बेटा, अभी तक तो तुमको बेटा नहीं हो रहा था तो ये तुम्हारा बेटा कैसे हो गया, अब चला गया तो तुम्हारा बेटा, तो ये बोलता क्यों नहीं। नारद जी ने पूछा तुम्हारा बेटा ये है ना जो चला गया वो है किसके लिए रो रहा है, बेटे के लिए रो रहा है इसकी आत्मा के लिए रो रहा है, नई नई बातें सुन करके राजा को पूछे ना, मैंने बहुत से इतिहास की बातें पहुंचाई उनको बोध कराया ये संसार अपने कर्म से आते हैं अपने कर्म से जाते हैं, ये आया और इसमें सुख और शांति नहीं है, धन से सुख शांति नहीं है, उनको दिव्य उपदेश दिए और दिव्य उपदेश करके वो चले गए, उन्होंने साधन किया और मुक्त हो गए संसार से, उनको भक्ति भी शंकर राम की भक्ति, अब उनका शरीर मुक्त और भगवान का पार्षद बन करके इधर उधर में विचरण कर। एक दिन की बात है हिमालय पर कैलाश पर वो आए विमान से, विमान से उतर करके जय ही उतरे देखा बड़ी भारी सभा लगी हुई है देवताओं में, देवताओं में ब्रह्म ऋषि और देवता लोग सब बड़े बड़े वैष्णव नारद प्रभृति सब लोग उसमें बैठे, शंकर जी पार्वती जी वो अपनी गोदी में बैठा कर और सबको उपदेश कर रहे, क्या उपदेश कर रहे हैं, संसार में मत फंसना, पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, अंधा कुआं है जलता हुआ कुआं, और आसमान में जलता हुआ कुआं डूब करके उसमें मर करके आग में मत जलो, और ठीक इसी समय में भगवान का भजन करो, और इसी समय में हुआ उन्होंने सुना हंसने लगे, हंस करके अपने बंधु शंकर जी को, बंधु हैं अब गुरु भाई शंकरसन के शिष्य, वो भी शंकरसन के शिष्य शंकर भी, शंकर जी के गुरु कौन है, बलदेव प्रभु है शंकरसन राम वो है और चित्रकेतु महाराज जी के भी गुरु, इन्हें दोनों गुरु भाई लगते हैं, की महिमा बतला रहे हैं और पार्वती गोपाल जी उनकी निंदा कर रहे हैं। समझने की बात है, एक ही बात से, एक ही शब्दावली से शंकर जी की वो प्रशंसा कर रहे हैं कि तो आप ऐसे हैं, अपराकृत तत्व है, इतने ऊंचे उत्सव उठे हुए हैं, ये सभा में इतने पुरुष लोग नारी लोग हैं, आप इस लज्जा से भी ऊपर उठे हुए, भगवान की भक्ति में इतने आप लौलीन हैं, आपको याद नहीं ना कुछ नहीं जब पार्वती जी को गोदी में लेते हुए और ऐसी भगवान की कथाओं को आप सुना रहे हैं, ये कौन कर सकता है? बिना मुक्त पुरुष के, बिना उत्तम भक्ति के, बिना महाभवत भागवत के ऐसा कोई कर नहीं सकता ना? इसलिए हंस करके मुस्कुरा करके शंकर जी को कहा, और सब लोग तुम्हारी इस बात को लेंगे कि नहीं, कहीं ये लोग कहीं तुम्हारे ऊपर में दोषारोप तो नहीं करें, आप तो महान थे, आप विष को हजम कर सकते हैं, किया था ना विष को हजम, दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए आप महान हैं, इनको थोड़ा सा इन पर भी तो ख्याल रखें, इनके ऊपर में ख्याल रख ले कि नहीं, किंतु उसी की प्रशंसा उन्होंने की, हंसी दिल लगी थी, कृष्ण को वो भी आता है, देखो इसे बातचीत मत करना, ये बड़ा धूर्त है, अच्छा ये प्रशंसा हुआ है ना निंदा हुई, दूसरों के दृष्टि में जो अनाधिकारी है ये निंदा हुआ दोष है, किंतु रसिक वैष्णव के दृष्टि में ये महान है। शंकर जी की उन्होंने स्तुति की इसी रूप में, किंतु पार्वती जी जो बैठी हुई थी उन्होंने सोचा, जाओ हमारे पति को ये कामी कह रहा है, कामी तो कहा नहीं, किंतु उन्होंने मन में समझा स्त्री को गोदी में लेकर के और उपदेश दे रहा है, ये संसार से बचो और तुम इस संसार को अपनी गोदी में लिए हुए हो। पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया, यदि क्रोध की बात होती तो शंकर जी को क्रोध होता, किंतु उनको तो क्रोध नहीं हुआ, वो मुस्कुराते हुए उनके तरफ में देखने लगे, वो भी उनके तरफ में देखने लगे, वहां तब पति से दूर हुए और इनको हुआ अपमान समझाई, शिक्षा देने वाला ब्रह्मा तक नहीं है और इस सभा में नारद इत्यादि सभी सनक सनंदन सब बैठे हैं, कोई भी इनको उपदेश देने वाला नहीं, आज तुम उपदेश देने वाला गुरु मिल गया जो इनको तुम शासन करता है, जाओ तुम अशोक होकर के जन्म, अरे क्या हो गया, कितने दिन तक उसको हरी कथा और कुछ नहीं समझी, महाभागवत महावैष्णव उनको समझ नहीं आया और उनको ऐसे कहा। यदि उस समय में चित्रकेतु महाराज जी जो चाहते तो कहते ये अभी संपाद्य ऋषि पर लौट जाए, कहते ये इस अपराध से हमारा कोई भी साहब से कोई जरूरत नहीं, या उल्टे उनको अभी संपत्ति जाओ तुम सुकर हो जाए या सुकरी हो जाए तो हो जाए, किंतु उन्होंने मुस्कुरा करके अंगीकार कर एवं मस्तु, इसलिए कोई भी भक्त हो मुक्त पुरुष हो चाहे जिस जोनी में भी जाए कहीं भी रहे जिस अवस्था में रहेगा भगवान का प्रेम नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए शंकर जी ने कहा पार्वती जी, अरे तेने क्या कर दिया, महापुरुष लोगों को नरक में जाए स्वर्ग में जाए चाहे असुर जोनी में लो चाहे देवता की जोनी में हो गंधर्व की जोनी में मनुष्य की का प्रेम कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, तो इनका तो कभी होगा नहीं, किंतु तुमने जो अब यह अपराध किया तुम्हारी क्या गलती, ऐसा देखो इनका प्रभाव, कि तुमने इसको ऐसा भी संपाद दिया और ये प्रसन्न चित्त होकर के अंगीकार कर दिया और इसका कुछ भी विरोध नहीं किया, ऐसे भगवान के भक्त महान शंकर जी की प्रशंसा कर, तुमने इस दिलगी का अर्थ नहीं समझा, वो तो हमारी महिमा का है। इसी प्रकार से कोई उच्च कोटि का महात्मा वैष्णव किसी उच्च कोटि के महात्मा की प्रशंसा करता है, कनिष्ठ अधिकारी नहीं समझता, जैसे हमने कभी कहा कि स्वामी जी केवल नाम प्रचार करने के लिए भक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी नहीं आए, वो किस लिए आए? महाप्रभु जिस अप्राकृत प्रेम को जगत में देने के लिए आए, उस देने के लिए आए। ये साधारण तो अभी काल का लड़का भी कह देगा, जैसे मांस मछली मत खाओ, स्त्री संग मत करो, ड्रिंक मत करो, ये सब तो सभी लोग कर सकते हैं। भगवान का नाम करो, ये कौन नहीं कर सकता है, ये बड़ी चीज नहीं है। किंतु प्रेम के साथ में हरि नाम करो, ये बड़ी भारी कठिन चीज है। चैतन्य महाप्रभु इसी यही नहीं, इससे और भी ऊपर वो भी प्रेम देने के लिए आए, इसलिए ये लोग महान है। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया गया, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषय नमः। कृष्ण प्रेम को दिया, इसलिए महावदान्य अवतार है, जो कृष्ण ने भी नहीं किया। कृष्ण ही महाप्रभु है, किंतु उस लीला में उन्होंने दिया नहीं, केवल आस्वादन किया। और उस लीला में उन्होंने आचंडाल, यहाँ तक कि पशु पक्षी जितने जो अनाधिकारी हैं सबको वो ब्रह्मा का दुर्लभ प्रेम, हमारे रूप गोस्वामी आए उस प्रेम को देने के लिए। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादि सठ गोस्वामी लोग, जिसके बाद में नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, उसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि जितने थे, वो इस प्रेम को देने के लिए आए। इसके पहले और लोगों ने भक्ति दी थी, उसमें वो सब चीजें आ जाती है प्रचारित, ये कोई बड़ी बात नहीं। किंतु ये भी दिया किस लिए? उस प्रेम को देने के लिए। खेती करने के लिए पहले तो जंगल काटना है, जंगल नहीं काटेंगे, खेत को अच्छा तरह से नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा? ये करना जरूरी है, किंतु किस लिए? बीज के लिए ना, बीज देने के लिए, वो बीज है प्रेम। यदि प्रेम दिया, इसलिए स्वामी जी भी उसी धारा में है, इसलिए वो प्रेम देने के लिए। इस चीज को कनिष्ठ अधिकारी लोग नहीं समझते, ऐसे लोगों को बाइकआउट करेंगे, क्योंकि भक्ति की जरूरत नहीं है। यदि भक्ति की जरूरत होती इसकी मर्यादा तब समझते क्या कि हमारी गुरु को इतना महाप्रभु जी की लाइन में लेकर के रखती है। इसलिए वैष्णव को समझना बड़ा भारी कठिन है, साधारण आदमी नहीं समझ सकता है। भक्ति में इतना उन्नत होगा वही आदमी समझ, इसलिए हम लोगों को इन सब चीजों से बचना चाहिए। यदि अपराध होता चित्रकेतु महाराज का, तो असुर योनि में जाने के बाद में वो भगवान की भक्ति नहीं करते, किंतु देखा जाता है कैसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमको धन नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, विश्व की कोई संपदा नहीं चाहिए, हमको ब्रह्मलोक ब्रह्मांड में बनना नहीं चाहता, इंद्र के पद से कोई जरूरत नहीं, ब्रह्मांड का राज्य नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? अजात पक्षा इव मातरम खगा तन्ने यथा बच्चा तर सुधारता प्रिय प्रिय विशुतं विषन्ना मनोरमेंदा देखते। जैसा कोई जिसको पंख नहीं निकले हैं, ऐसा कोई पक्षी सावक पक्षी का बच्चा अपनी गई हुई मैया के लिए उसका चिंतन करता है, उसी तरह से भगवान के लिए सब समय चिंता करो। बछड़ा जैसे एक मिनट का समय नहीं होकर तुरंत अपनी रस्सी नहीं खोलने देता और दौड़ करके माँ के स्तन में लग जाता है, ऐसे डां डां करता है, वैसे में भगवान के लिए हा कृष्ण हा कृष्ण, और अंत में प्रिय प्रियु, जैसे प्रिया अपने विदेश गए हुए पति के लिए दिन रात चिंता करती है, उनका गुणगान करती है और उसके लिए सुंदर सुंदर सेवा के उपकरणों को सजाती है और सेवा करती है, ऐसे ही हमारा जीवन। हम मैंने गोपी भाव का इंगित दिया उसमें, जैसे प्रिया प्रियतम को मानती है उसी प्रकार से आपको प्रियतम मान करके और अपने को प्रिया मान करके आपकी सेवा कर सकते। इंद्र उसको माफ बद नहीं कर सके थे, वो कहते हैं बार बार हमारा शरीर ये बदल दो, इस शरीर से तामस शरीर से भजन नहीं होगा, किंतु भक्ति का कितना उत्कर्ष। श्रीमद् भागवत के लक्षणों में से एक लक्षण है जहाँ पर कि विद्या सुद्धा चरित्र है, इतना उन्नत। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं जो लोग ये सोचेंगे पार्वती के चरणों में या शंकर जी के चरणों में चित्रकेतु का अपराध हुआ, वो अपराधी है। आरा समझ में क्या? जो लोग ये समझते हैं कि चित्रकेतु महाराज जी का अपराध श्री जी के चरण में हो, उनकी निंदा की, वो लोग अपराधी हैं। किसके चरणों में? चित्रकेतु महाराज। उनकी भक्ति कभी नहीं थी, प्रेमा भक्ति की चरम पराकाष्ठा भाव अवस्था तक उनकी थी, इसलिए अपराधी होते तो भक्ति नष्ट हो जाती, बल्कि इसका नतीजा भोगना पड़ा सभी को। क्या भोगना पड़ा? पति से विच्छेद हो गया, अपने शरीर को भस्म करना पड़ा इसी अपराध के वजह से, और अंत में पार्वती जी का शरीर लेकर के तपस्या करके तब शंकर जी के शक्ति मिली, और फिर भक्ति में संदेह नहीं किया। वैष्णव तत्व अपराध इस प्रकार से विचार। और एक विचार, उदाहरण नहीं देने से नहीं समझेंगे, इन चीजों को हृदयंगम कराना पड़ा करते हैं। उदाहरण के द्वारा बड़ी कठिन चीज भी सरल रूप में और चित्र की महाराज आता है, तो भार नहीं बहन कर सकता। देखो तो मैं दंड दूंगा, याद रखेगा, जीवन भर याद रखेगा। तो नहीं है तो ढूंढने लायक नहीं है। कौन राजा, कितने दिन का राजा, कौन प्रजा, दंड देने वाला कौन, खुद ही दंड ग्रहण करने वाला, कुछ ऐसे बातें की राजा तो मैं पूछने के लिए जा रहा था। ये सुख दुख किसको होता है? आत्मा दुबली है या पतली है? साधारण जीव थे, बैकुंठ से उतर करके गोलोक से यहां पर आए हैं, गिर गए हैं ये अपराधी, ये परम भगवत भक्त है। जगत में उनकी बात लोग नहीं समझेंगे, मुक्त महापुरुष लोग जगत की शिक्षा के लिए परस्पर में ऐसी कोई बात करते जगत में आ जाते शिक्षा के, इसलिए सती जी ने भी उनको अभी संपात नहीं किया और न तो चित्रकेतु महाराज जी को अभी संपात लगा। वो तो एक घटना बना करके जगत में अवतरित होने के लिए एक बहाना था, बहाना बना करके जगत में आकर के शिक्षा दिया। किसी भी योनी में कहां भी कोई व्यक्ति रहे वहीं से भगवान की भक्ति हो सकती है। स्थाने स्थिता जहां भी कोई रहे, गृहस्थ में रहे वहीं से भक्ति करे, त्यागी है वहीं से भक्ति करे, जो गरीब है वहीं से करे। भक्ति में कोई पैसे की जरूरत नहीं है, यदि पैसे की जरूरत है तो अमेरिका के फोर्ड कंपनी और ये सब खरीद लेती हम लोगों के पल्ले कुछ, ये पैसे से भक्ति, प्रतिष्ठा से भक्ति नहीं होगी। इसलिए गरीब को भी हो सकती है, धनी को, यहाँ तक कि पशु पक्षी को भी हो सकती है। कैसे? यदि उसको हरिनाम सुनाओ, यदि किसी सुख पक्षी को कहा जाए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम सुनाओ उसको, और वो रटने लगे दिन रात वही रटता, उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा? और संभावित होगा, अवश्य में होगा, इसमें शंका की बात नहीं। इसलिए चित्रकेतु महाराज जी का जो जगत में आए हैं गोलोक से गिर करके, ये जय विजय काली जी, जय विजय कर लग रहा है ना, कैसा लग रहा है समझ में ठीक आ रहा है? ये सब चीजें भक्ति में आवश्यक है, ये प्रतिकूल चीजें हैं, इनको छोड़ना है और भक्ति की तरफ अनुकूल को हमको करना है। श्रवण कीर्तन में स्मरण ये अनुकूल चीजें हैं, साधुओं का संग अनुकूल चीज है, प्रतिकूल चीज ये वैष्णव के चरण में महत्व चरण में। एक थोड़ा सा ये प्रसंग कह करके आज का प्रसंग विजय सनक सनंदर सनत कुमार जैसे महर्षि लोग बैकुंठ में बता रहे भगवान को दर्शन करने की लालसा। क्यों लालसा हुई? ये तो रहते हैं भूतभुआ सह महाजन तपल ब्रह्मांड का, बैकुंठ में जाने की क्यों हुई? इसका भी कोई कारण, जहां पर ध्यान करेंगे वहीं पर विष्णु आ जाएंगे, भगवान नारायण आ जाएंगे, इनको कहीं आने जाने, लेकिन बैकुंठ में बैकुंठ में गए, देखा जैसे जय विजय नाम के दो प्रहरी हैं द्वारपाल, डंडा वहीं पर लगा दिया, जब आगे मत आओ, नंगे होकर के फूल भूषित होकर के जहां या तो उनको क्रोध हो गया, उन्होंने कहा जब तेरे जैसा व्यक्ति आ रहने जो के नहीं, अरे उन विष्णु को क्या डर है भगवान को, किसी से डरते हैं वो तो सब समर्थ है, इन्होंने डर की बात तो है नहीं, तो हमको जाने के लिए मना क्यों किया गया? उनको समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने कहा जाओ तीन जन्मों तक असुर योनि में जाओ, असुर बन। और इसी वजह से पहले रावण कुंभकर्ण दूसरे जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण और तीसरी में शिशुपाल और दंतपत्र, और तीन जन्म के बाद में फिर बैठे उन्होंने अभी संपादित। अब वहां से वो गिर पड़े, वो पहले आए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, अतः तो वो गोलोक से यहाँ पर आए, ऐसा ही फॉल डाउन हुआ ना, इसलिए जितने जीव हैं उसी जगत से आए हुए, गलत बात समझ। यहाँ कहता कि जय विजय के प्रति में तुम यदि आशा कहेगा तो तुम्हारा अपराध होगा, खबरदार मत कहो, वहां पर माया नहीं जाती है, अज्ञानता नहीं है इस बैकुंठ में। बात ऐसी भी हमारे भक्तों ने इसको देखा, जय रस का आस्वादन किया, वीर रस का आस्वादन किया। हमारे समान कोई वीर ही नहीं है जिसे मैं लड़ सकूं और अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकूं। ये भी एक इच्छा होती है। बड़े बड़े पहलवान लोग होते हैं, उनको लड़ने की इच्छा, मुलायम सिंह को लड़ने की इच्छा होती है। तो इसलिए उनको इच्छा होती है। ये भी एक रसों में एक रस है, वीर रस, ऊपर रस क्या गंगा रस। उन्होंने देखा कि हमारे प्रभु के समान तो और कोई वीर नहीं है, कौन लड़ सकता है। उन्होंने मन ही मन में प्रार्थना की, प्रभु वो सेवक सेवक नहीं जो प्रभु की इच्छा को पूर्ण कर सके, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हमें आप कुछ ऐसी भावना दीजिए, मैं आपका विरोधी होकर और आपसे लड़ करके आपके छक्के छुड़ा दूँ और आपके लड़ने की इच्छा को पूर्ण कर दे। आपकी इच्छा अपूर्ण रहने से हमको बहुत पसंद है। जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो अच्छा, मैं तुमको सुझू, उसमें अद्भुत लीला चरित्र होगी और उसको जो सुनेगा उसका भी संसार से मुक्ति हो जाएगी और भगवान के चरणों में। इसलिए तुम्हारी इच्छा बहुत शुभ है, मैं इसको ऐसा करूँ। इसलिए उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा उनको आकर्षण कर लिया, चारों ऋषियों को जो वैकुंठ में जाने की जरूरत है इसलिए उनको आकर्षण, और इनके अंदर में दिया जैसे डंडा लगा दो, जैसे आए नहीं रुकवा दो। विष्णु को कभी नहीं रुकना चाहिए, वैकुंठ में रुकने की जरूरत है, किंतु इनके अंदर में कर साथ साथ उन्होंने अभिसंपात कर दिया। जब अभिसंपात हो गया, जब राज्य तीन जन तपस्व हो तब भगवान आ गए और ऋषियों के चरण पकड़ लिए। ऋषि लोग रोने लगे, अरे प्रभु ये क्या किया, आपके भक्तों को हमने ऐसा अभिसंपात किया, ये तो हमारा बड़ा भारी अपराध। और ये जय विजय कर रहे, प्रभु आज हम लोग आपके पास में रह करके इन ब्राह्मणों का, ब्रह्मर्षियों का हमने निरादर किया, अब वो भी रोने लगे, ये भी रोने लगे। भगवान से दोनों कहने लगे, प्रभु अब क्या कैसे। प्रभु जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम भी चिंता, ये तो हमने जानबूझ करके जो माया के द्वारा एक लीला सृष्टि करने के लिए, जगत में जाने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए, उनको भक्ति तरफ में आने के लिए, तुम लोगों का इस प्रकार से वैकुंठ में आना, इनका उनको रोक देना, उनका क्रोधित होकर के अभिसंपात देना, जो वैकुंठ में क्रोध नाम की चीज नहीं है, ये योग माया। इसलिए यदि कोई कहे जैसे वैकुंठ से गिर पड़े, ऐसा नहीं सोचा, साधारण आदमी का विचार नहीं करता, वो कहता है जैसे ये अपराध के कारण। इसलिए कोई भी जीव जो वैकुंठ से ऊपर या वैकुंठ तक में है, वो कभी भी उसमें कोई अपराध और कुछ नहीं होता, वहां से गिर नहीं सकता, इसलिए जीव वहां से नहीं आया। जो मुक्त वहां पर सेवा कर रहे हैं वही पर सेवा कर, वो नहीं आते बल्कि भगवान की लीला के लिए, विनोद के लिए उनमें से। इसलिए इन पर अपराध नहीं कर सकते, इसलिए इन सब चीजों को दूर कर पैसों के ऊपर थोड़ा सा बचना चाहिए। अब क्या कर पाओ, यदि देखते हैं हम कुछ दुराचारी जैसा लग रहा है, हम नहीं समझ रहे, इनकी निंदा नहीं कर रहे, सब और यदि किसी मानसिक भी कोई अपराध हो गया, अवज्ञा हो गई, तो उसके लिए पुनः पुनः पाश्चात्य। यहाँ तक हुआ आना, अब इसके बाद में चलेंगे हम लोग कैसे भक्ति। अभी अनर्थ के यहाँ वहाँ बताया अपराध का,